मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFAIS के आज 5 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं जय प्रकाश त्रिपाठी, आप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, और इमरान आलम, आप सिवान बिहार से हैं। तो दोस्तों, आज मुझे आप सब को एक सूचना देनी है और सच पूछिए तो यह सूचना देते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और यह सूचना मैं आपको एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से दे रहा हूँ। और सूचना यह है कि जो हमारे ऑफलाइन क्लास का जो नेक्स्ट बैच होगा, जो 15 दिन की क्लासेस होंगी, उसकी डेट घोषित कर दी गई है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो बकायदे उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं और यह डेट रखी गई है 7 मार्च से 21 मार्च। 15 दिन की क्लासेस होती हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं, ठीक वही जो कि हमारे क्लासेस का पैटर्न रहा है। और इसके लिए बकायदे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। मैं डेट एक बार और डिक्लेयर कर दे रहा हूं, वह 7 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। तो दोस्तों, ये नई डेट है और हमारे जो पुराने डेट, जो पुराने डेट क्या मतलब, अभी तो चल रहा है 28 अक्टूबर से 11 नवंबर, अब देखिए कैसे मुंह से निकल जाता है पुरानी डेट। तो इसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं उन सबके प्रति एकेडमी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, खासकर इस बात के लिए कि आप लोगों का एकेडमी के प्रति इतना विश्वास है, एकेडमी को आप लोगों का इतना स्नेह और सम्मान प्राप्त हो रहा है। और एकेडमी के बिहाव पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपके मन में एकेडमी की जो छवि बनी हुई है, उस छवि को बनाए रखने के लिए, बल्कि सच पूछिए तो उस छवि को और निखारने के लिए हमारी जो पूरी टीम है अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं रखेगी। लगातार हमारी कोशिश होगी कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आप जिस तथ्य की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर बात करने जा रहा हूं और वह है स्व मूल्यांकन पर। लेकिन आइए, पहले सोमवार का दिन है तो थोड़ा सा कोविड के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे अब पूरा विश्वास है कि खासकर कोरोना को लेकर के शुरू में जो आपके मन में आतंक और भय की स्थिति थी, उसमें अब डेफिनेटली धीरे धीरे कमी आ रही होगी और एक आत्मविश्वास या उससे लड़ने की क्षमता या उसके प्रति जो खौफ था वह कम हो रहा होगा। देखिए, सिविल सर्विस का प्री एग्जाम हो गया, इतने सारे पूरे देश के स्टूडेंट अलग अलग स्थानों पर गए और एग्जाम देकर के लौटे, तो आप देख रहे हैं कि एक्टिविटीज शुरू हो गई है, अनलॉक जो शुरू हो रहे हैं उसमें भी धीरे धीरे ओपन अप किया जा रहा है। 15 तारीख से सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे, ठीक है, सभी को अपने अपने कुछ नियम कानून और अनुशासन के तहत ही खुलेंगे, लेकिन धीरे 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 चीजें ओपन अप हो रही हैं और सच पूछे तो स्थितियों में भी सुधार हो रहा है। न्यूज में आपने बकायदे सुना है कि जो स्वस्थ होने की दर है वो 84% से अधिक हो गई है, जो बहुत अच्छी है। जो मृत्यु दर है वो गिरकर 1.5% हो गई है और इस मायने में, इन सब मायनों में हम दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने यह भी कहा है बकायदे कि जो उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक अब हमारे देश के लगभग 20-25 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाएगा, यानी कि जो वैक्सीनेशन है लगातार उसके बारे में भी बहुत ही सकारात्मक खबरें आ रही हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा हौसला बढ़ता ही है और संक्रमण की दर भी जो है अब लगभग 8.4% तक आ गई है, मतलब जितने टेस्टिंग हो रही है उस अनुपात में संक्रमित मरीजों की संख्या थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि जब ये दर 5% तक पहुंच जाएगी तो ये मान करके चलिए कि अब ये जो स्थिति है वह कंट्रोल में है। लेकिन एक बात जो आप अखबारों में लगातार पढ़ रहे होंगे और जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, वह है मास्क का इस्तेमाल किया जाना। अभी जो बेस्ट वैक्सीनेशन हो सकता है वह है मास्क। यह बात मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप सब उत्साह में आकर के और फिर अनुशासनों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो मास्क का उपयोग आप सबको, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, निश्चित रूप से तब तक करना ही चाहिए जब तक कि हमारे यहाँ के विशेषज्ञ इसके लिए हमें छूट नहीं दे देते कि आप चाहे आप लगाएं या चाहे ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस अनुशासन का पालन मुझे लगता है कि हमें करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें करूं। आपने उम्मीद की होगी कि डेफिनेटली अभी जो कल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर हुआ है, मैं उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। दोस्तों, डेफिनेटली मैं उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, की ही जानी चाहिए और आप लोगों को इसकी बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा भी होगी। लेकिन सच पूछे तो मैं ऐसे मामलों में ब्रेकिंग न्यूज के स्टाइल में काम करना पसंद नहीं करता, है ना। 100 प्रश्न है, उन 100 प्रश्नों को पढ़ना, इत्मीनान के साथ पढ़ना और उन सभी का मूल्यांकन करके उसके बारे में निष्कर्ष निकालना, और दोनों तरफ से निष्कर्ष निकालना कि इस साल के पेपर का चरित्र क्या रहा है और ऐसा क्यों रहा है, और साथ ही कि अब जो नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे 2021 में, उसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यह जल्दबाजी में नहीं हो सकता, है ना। इसके लिए इत्मीनान की जरूरत होती है और डेफिनेटली हमारे पास इसके लिए समय है और मैं समय समय पर इस पर बात करूंगा ही करूंगा, क्योंकि यह आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के लिए जो मैंने विषय चुना है, यह भी किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन। इस स्व मूल्यांकन का संबंध किससे है दोस्तों? इस स्व मूल्यांकन का संबंध उन स्टूडेंट्स से भी है जिन्होंने प्री एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म तो भर दिया था लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं बैठे। अब जो एग्जामिनेशन में नहीं बैठे उसमें दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो उस तरह के लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिन्होंने अपना एडमिशन का कार्ड डाउनलोड ही नहीं किया कि हमको तो जाना ही नहीं है, और दूसरे ये भी हो सकते हैं कि जिन्होंने अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड तो कर लिया लेकिन वो एग्जाम देने नहीं गए, और फिर वो स्टूडेंट है जो एग्जाम बकायदे दे करके आए। ये स्व मूल्यांकन सभी के लिए है। सीधी सी बात है कि जो किसी भी वजह से एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हैं उन्हें बकायदे स्व मूल्यांकन का मतलब यह है कि आपको अभी लिखना है, अभी ताजे ताजे में ही लिखना है, इसको टालिए मत, एक दो दिन में कर डालिए। तो जो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए वो बकायदे नोट करें, लिखें कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने फॉर्म भरा लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए, और वो भी तब नहीं बैठ पाए जो कि मई लास्ट में होने वाला एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर को हो रहा है। इस बीच में उन्हें इतना लंबा वक्त एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके बावजूद वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए। आपको इसका बहुत ही तटस्थ होकर मूल्यांकन करना चाहिए, बहुत ही निर्ममतापूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। दोस्तों, ये जो स्व मूल्यांकन है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आगे के लिए ये कितने बड़े लाइट हाउस का काम करेगा, आपको गाइड करेगा। अब वे स्टूडेंट हैं जो बकायदे एग्जामिनेशन में बैठे, उन्हें बहुत डिटेल में अपना मूल्यांकन करना चाहिए, बहुत डिटेल में। ये 4 पेज हो जाए, 5 पेज हो जाए, 10 पेज हो जाए, 15 पेज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1-2-3 दिन इसके लिए लगाइए और बहुत सोच सोच कर लिखिए, ये नहीं कि कुछ भी एट्रेंडम आया और आप लिख बैठे। आप बकायदे उसके सब पॉइंट्स बनाइए, सब पॉइंट्स ये बनाइए कि जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन से पहले मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मनोविज्ञान की स्थिति क्या थी, मतलब किस तरह का आत्मविश्वास मैं महसूस कर रहा था। आप फिर नेक्स्ट पॉइंट बताइए कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस से मैंने किन किन चैप्टर्स को या किन किन विषयों को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था, किन किन को सामान्य तरीके से तैयार किया, किन को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया, ये बकायदे लिस्ट बनाइए। इसके बाद फिर आप एग्जामिनेशन के दिन वाली अपनी मानसिकता के बारे में लिखिए कि मुझे नींद नहीं आई, चिंता रही, आत्मविश्वास गड़बड़ाता रहा, बेचैन रहा, उनके बारे में बकायदे लिखिए। यही सब तो लिखना है, ये मत सोचिएगा अरे यार ये तो छोटी सी बात है, इसके लिए क्या लिखना। नहीं नहीं, आप लिखिए जो भी मन में आता है लिखिए, लेकिन सच सच लिखिए। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में आप चले गए, आपको पेपर मिला, पेपर मिलने से लेकर के पेपर खत्म होने तक का मूल्यांकन कीजिए, अपने मनोविज्ञान का मूल्यांकन कीजिए, और फिर जो आप प्रश्न हल कर रहे हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। उदाहरण के तौर पर कि मेरे इतने प्रश्न डायरेक्ट बन गए और ये इस विषय के थे, लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी, ये क्यों बने उसका कारण भी लिखिए, कारण सहित आपको लिखना है कि क्या कारण थे कि ये प्रश्न आपने बड़े सीधे एकदम सही तरीके से हल कर लिए। इसके बाद फिर दूसरे में उन प्रश्नों को लीजिए जिनके 2 के बारे में भ्रम रहा, यानी कि 4 विकल्प थे लेकिन 2 में आप अटक गए, तो फिर लिखिए कि क्यों अटके, आपके पढ़ने में कहाँ परेशानी हुई, पढ़ने में मतलब तैयारी करने के दौरान कहाँ परेशानी हुई, या आप एग्जामिनेशन में उन्हें ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय के दबाव में आप काम कर रहे हैं, तो वहां क्या परेशानी हुई आप लिखिए। इसके बाद कितने प्रश्न बने, कितने प्रश्न छूटे, छूटे जो प्रश्न छूट रहे हैं वो क्यों छूटे, क्या कारण रहा कि वो आपकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, क्या आप अनुमान नहीं लगा सके उनके बारे में। इन सब को करने के बाद फिर आप समय के प्रबंधन को लेकर के लिखिए कि आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने थे तो कितने क्वेश्चंस आप शुरू के एक घंटे में सॉल्व कर पाए, कितने क्वेश्चंस फिर बाद में सॉल्व कर पाए, कितना समय आपको कम पड़ गया या समय ठीक ठाक चल रहा था नहीं चल रहा था, और अगर समय का प्रबंधन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर हो गया तो क्यों हो गया, तब ऐसे आपने क्या चमत्कार किया कि समय का प्रबंधन हो गया, वो आपको आगे काम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मूल्यांकन करते हुए और अपनी मार्किंग करनी है कि आपका कितना स्कोर संभावित है, आप कितना स्कोर करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं मित्रों, जितने डिटेल्स में आप लिख सकते हो उतने डिटेल में लिखिए और ऐसा करिए। हो सकता है कि मेरी ये बात सुनने के बाद आपको ये फालतू की बात लगे, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह बात बता रहा हूं। ईश्वर न करे कि आपको नेक्स्ट ईयर फिर प्री देना पड़े, इसी साल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इसी साल के एग्जामिनेशन में आप प्री क्वालिफाई कर जाए, मेंस कर जाए, इंटरव्यू कर जाए और आपको अपनी पसंद की नौकरी भी मिल जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन देखिए जीवन की सच्चाई ये है कि आप सफल हो सकते हैं, आपका दोस्त सफल हो सकता है, लेकिन असफल होने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। तो कम से कम जो लोग असफल होंगे उन्हें नेक्स्ट ईयर जब वो कल की तैयारी करेंगे तो उन्हें अपनी रणनीति बनाने में इससे बहुत अधिक मदद मिलेगी। हो सकता है कि मेरी बात पर अभी आपको उतना विश्वास न हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में आपने भले ही एक दो दिन उसमें लगाया लेकिन बहुत बड़ा काम कर लिया, और बकायदे आपकी उंगली पकड़ करके आपको सही रास्ता दिखाएगा। दोस्तों अंत में एक बात और, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको उम्मीद है, मैं जनरल कैटेगरी के स्कोर की बात कर रहा हूं, उसी के आधार पर जो दूसरी श्रेणी के जो परीक्षार्थी हैं अपना अपना मूल्यांकन कर लेंगे, अनुमान लगा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 50% के आसपास स्कोर करने की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं तो उसमें आप बकायदे 2-3% कम भी कर सकते हैं, 47-48 से लेकर के, और फिर 50 से ऊपर की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि इतना आपका स्कोर हो जाएगा तो बिना देरी किए आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। हालांकि देखिए यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो प्री और मेंस के बीच में जो लंबाई होनी चाहिए, जो समय का गैप होना चाहिए, उसको उसने कोरोना की वजह से समेट नहीं दिया, कम नहीं किया है, आपके पास समय उतना ही है जितना कि और साल होता था। तो आपको चाहिए कि आप पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लग जाएं, आप प्री एग्जामिनेशन के रिजल्ट की घोषणा की प्रतीक्षा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि अगर आप तैयारी कर लेंगे और दुर्भाग्य से रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये तैयारी आपके अगले साल के प्री में काम आएगी, क्योंकि पढ़ा हुआ कहीं भी नष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं वह काम आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स स्वमूल्यांकन के लिए मुझे आपसे ये कुछ बातें करनी थी। अब इस मुख्य विषय को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, संदीप नवहेरकर महाराष्ट्र से, अविनाश चंद्र सूरत गुजरात से, कृष्णानंद कुशवाहा प्रिया पटना से, सुरभि भदौरिया उत्तर प्रदेश से, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, और अमृत नारायण सतपति, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।